आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का आज किया उद्घाटन। ट्रेन में यात्रा कर स्कूली बच्चों से की बातचीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, कल्याण सिंह की प्रशासनिक दक्षता से मिली प्रदेश की राजनीति को नई दिशा। नीट पीजी के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 7 जनवरी से होगी शुरू। महाकुंभ के मद्देनजर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक। महाकुंभ मेला की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा आदेश। और प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल बारिश का जताया पूर्वानुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच 46 अरब रुपए की लागत से तैयार किए गए 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और ट्रेन में मौजूद स्कूली बच्चों और अन्य लोगों से बातचीत भी की। गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि नमो भारत ट्रेन के संचालन से दिल्ली और गाजियाबाद की दूरी काफी कम हो जाएगी।
दिल्ली और गाजियाबाद की दूरी समाप्त हुई। जो लोग दिल्ली रहते हैं वो लोग भी अच्छे वातावरण की तलाश में गाजियाबाद आकर के अपने कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, और जो लोग गाजियाबाद रहते हैं और दिल्ली जाकर काम करते हैं उन लोगों के लिए ये ट्रेन एक वरदान साबित होगी।
नमो भारत ट्रेन के नए कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही इस रूट पर ट्रेन का संचालन आज शाम 5 बजे से जनता के लिए शुरू हो गया। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
नमो भारत कॉरिडोर के नए सेक्शन के उद्घाटन के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगी। साहिबाबाद और मेरठ के बीच 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर का आज उद्घाटन के साथ ही अब इस रूट पर परिचालन 55 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। इसमें कुल 11 स्टेशन होंगे। सरकार द्वारा आम जनता के लिए यह बहुत बड़ा तोहफा है। जो सफर कभी घंटों में तय हुआ करता था वह अब कुछ ही मिनटों में पूरा कर लिया जाएगा। मनोज कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गाजियाबाद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके बाद प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने तथा प्रशासनिक दक्षता को परिपूर्ण करने के लिए कल्याण सिंह के द्वारा 1990 के दशक के प्रारंभ और उत्तरार्ध में जो प्रयास शुरू किए गए थे वो नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया।
अक्सर होता है कि लोग सत्ता के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए मूल्यों के साथ समझौता करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व भी था जिन्होंने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत भी प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने, प्रशासनिक दक्षता को परिपूर्ण करने के लिए उनके द्वारा 1990 के दशक के प्रारंभ में और उसके उत्तरार्ध में भी जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे वह एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार की तिलांजलि दी। उनकी दूरदर्शिता के कारण ही आज अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जनजातीय युवकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय संस्कृति ने भारत के ज्ञान विज्ञान की धरोहर को सजोकर विपरीत परिस्थितियों में उसे आगे बढ़ाने का काम किया है।
अपनी परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति होना, श्रद्धा और सम्मान का भाव होना और अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा का भाव होना, यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों का यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको नजदीक से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा हो। 25 करोड़ की आबादी है लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है।
अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम लला के विराजमान होने के एक वर्ष पूरे होने पर 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 11 जनवरी को पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे गर्भगृह में श्री राम लला का अभिषेक करेंगे। इसके बाद श्री योगी अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। उसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोनू निगम, शंकर महादेवन और मालिनी अवस्थी समेत कई मशहूर कलाकारों के द्वारा गाया गया भजन भी रिलीज किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी में दाखिला लेने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 7 जनवरी से शुरू होगी। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आदेश के मुताबिक 7 जनवरी को सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इसके बाद चॉइस फिलिंग 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 10 जनवरी शाम 5 बजे तक की जा सकेगी। पीजी के लिए सीट आवंटन 13 जनवरी को होगा और 15 से 18 जनवरी के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया जा सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने महाकुंभ 2025 को देखते हुए राज्य में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किया गया है। यह आदेश महाकुंभ मेला की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर के अधिकारी से अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। प्रयागराज रेल मंडल ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए हैं। इन ऑब्जर्वेशन रूम में विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रेलवे ने आपात स्थिति से निपटने और यात्रियों को जरूरी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम बनाए हैं। इस बारे में प्रयागराज रेल मंडल के चीफ पीआरओ शशिकांत ने बताया कि रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, सुबेदारगंज, नैनी और छिपकी स्टेशन पर ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए हैं। इन ऑब्जर्वेशन रूम में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहेंगे। मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम में सभी जरूरी उपकरण और दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। सर्दी के मौसम, भीड़ और अधिक चलने से हार्ट, साइनस और डायबिटीज के मरीजों को होने वाली समस्याओं का तत्काल प्राथमिक इलाज यहां किया जा सकेगा। समस्या गंभीर होने की स्थिति में रेलवे या शहर के अन्य अस्पतालों में मरीजों को पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेति।
टीवी के मरीजों की पहचान व इलाज करने में उत्तर प्रदेश 2024 में भी अव्वल रहा है। प्रदेश में पिछले साल 6.5 लाख मरीजों के चिन्हीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष 6,73,000 से अधिक मरीजों की पहचान की गई, जो एक रिकॉर्ड है। इन सभी टीवी मरीजों का इलाज शुरू हो चुका है। राज्य टीवी अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि हर माह की 15 तारीख को चलाए जा रहे एकीकृत निक्षय दिवस, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान और दस्तक अभियान की मदद से ज्यादा टीवी के लक्षण वाले मरीजों को खोजने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश भर में 100 दिवसीय सघन टीवी अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश में और ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग लखनऊ केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के बाकी स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। 7 जनवरी से तापमान में फिर से गिरावट होगी और घने कोहरे की संभावना है।
वर्तमान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश में पहुंचने के साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, परंतु इसके साथ ही इसकी द्रोणी अरब सागर में काफी दक्षिण तक जाने के कारण मध्य क्षोभ मंडल में आ रही नमी के प्रभाव से बने मध्यवर्ती एवं ऊपरी बादलों के कारण प्रदेश में आए बादलों से कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे यानी कि शीत दिवस से अत्यधिक शीत दिवस की परिस्थितियां आज भी देखी गई तथा इस पश्चिमी विक्षोभ से आने वाले दिनों में 6 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी के साथ छिटपुट बारिश होने तथा प्रदेश के अन्य भागों में मौसम मुख्यतया शुष्क बना रहने तथा धूप निकलने के साथ ही न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का आज किया उद्घाटन। ट्रेन में यात्रा कर स्कूली बच्चों से की बातचीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, कल्याण सिंह की प्रशासनिक दक्षता से मिली प्रदेश की राजनीति को नई दिशा। नीट पीजी के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 7 जनवरी से होगी शुरू। महाकुंभ के मद्देनजर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक। महाकुंभ मेला की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा आदेश। और प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।